ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் ஐசா குஷ் நாம் ஹே உன்கா, தோ உன்ஹோனே யே புக் லிக்கி ஹே ஆர் உஸ்மே உன்ஹோனே யே साबित किया है. साबित किया अपने हिसाब से उन्होंने साबित किया कि ये सारा संसार अपने आप बनता है, कहते उनका कर्ता कर्ता कोई नहीं है, कहते ऐसा लिखा उन्होंने, अपने आप बनता है. अब ऐसा एक भी दृष्टांत बताओ, एक भी दृष्टांत ले आओ जो अपने आप बनता हो. हमारे यहां तो आचार्य ने बिल्कुल स्थूल रूप से कहा कि जगताम यदि नो करता कुला लेने विना घट चित्रकारम विना चित्रम सत एव भवेत तदा. देखिए, बिना चित्रकार चित्र बन जाता है ऐसा कहीं सुना? संसार में कहीं दृष्टांत है कि अपने आप चित्र हो गया ऐसा? नहीं. क्या ऐसा कोई दृष्टांत ले आइए कुलाल के बिना घट की उत्पत्ति हो गई हो? ही नहीं सकता है. कोई भी कार्य तभी होगा जब उनके उत्पन्न करने वाले के अंदर ज्ञान, चिकित्सा और कृति हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता. और चेतन से तो हो ही नहीं सकता है. हमारे यहां सांख्य दर्शन है, कपिल प्रणीत, उनका कहना है कि सारा संसार है वो जड़ से बना है, प्रधान से बना है, कहते हैं. वो जो अभी बुक वाले की बात, उसको तो एक साइड में रख दीजिए, उसका तो यहां कोई क्लास ही नहीं है. हमारे यहां जो है सांख्य तत्व का जिसमें विचार है, सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं, वो सांख्य दर्शन के आचार्य महर्षि कपिल कहते हैं, बड़ा सूक्ष्म विचार किया है उन्होंने. और फिर वो कहते हैं कि सारे संसार की उत्पत्ति जड़ से हुई है, प्रधान से हुई है. आचार्य बादरायण जी ने उनका खंडन कर दिया, इक्षतेर ना शब्दम इत्यादि. जड़ से संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती, चेतन से ही हो सकती है. क्योंकि चेतन है ना, वही नाम और रूप दे सकता है. जड़ किसी चीज का नाम नहीं दे सकता है. जड़ है वो किसी चीज को रूप नहीं दे सकता है. और आप लोग इस बात को तो देखते ही है, सारे संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनका कोई ना कोई नाम है. बिना नाम का कोई पदार्थ ले आइए. बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो नाम साथ में लेकर के आता है क्या? तो कोई नामकरण कोई जड़ करता है? नहीं, चेतन ही नामकरण करते हैं, ये निश्चित बात है. तो भला बताइए जड़ से कैसे संसार हो सकता है? इसलिए ये निश्चित है, श्रुति वाक्यों से ये सिद्ध है कि सारे संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है. ये बात उपनिषद से साबित है, इतना ही नहीं स्थापित है, सिद्ध है. तत्व समन्वयात इस सूत्र से ये आचार्य बादरायण जी ने स्थापित किया कि सभी उपनिषद वाक्यों का एकमात्र ब्रह्म में ही पर्यवसान है. और ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत आनंद स्वरूप है. ऐसे ये ब्रह्म है वो सर्वत्र है. तो ऐसा जो ब्रह्म है वो औपनिषदम है, उपनिषद के द्वारा ही सिद्ध है. इसलिए सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, ये जो संसार है वो सब ब्रह्म है. ब्रह्म एव ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य है, ऐसा वो मुमुक्षु को अनुभव होता है. फिर आगे मुमुक्षु आगे जो है प्रार्थना करते हुए तृतीय वाक्य में कहते हैं, अहम ब्रह्मा मा निराकुर्याम, ये तृतीय वाक्य बनाया हमने, अहम ब्रह्मा मा निराकुर्याम। मुमुक्षु यहां पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, यानी कि तिरस्कार न करूं, मैं कभी भी ब्रह्म का तिरस्कार न करूं। अच्छा, ब्रह्म का तिरस्कार क्या हो सकता है? क्या आप कोई ब्रह्म को ऐसे पिंडीकृत करके कहीं फेंक सकते हैं क्या? नहीं। तिरस्कार का अभिप्राय है कि ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु अस्ति या नास्ति, इस प्रकार ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु अस्ति इति वा ब्रह्म नास्ति इति वा, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है, ब्रह्म अलग है, संसार अलग है, यह मानना क्या ब्रह्म का तिरस्कार है, या ब्रह्म का स्वीकार ही नहीं करना, ब्रह्म नास्ति ये कहना, वो ब्रह्म का तिरस्कार है। देखो, तिरस्कार वो है जो होते हुए भी उनके अस्तित्व को न मानना, वो तिरस्कार है। तो ब्रह्म का तिरस्कार जैसे हम लोग कहते हैं, अरे परमात्मा ब्रह्मा कहीं है ही नहीं, है तो सब यदि है तो दिखना चाहिए ना, किसी को आज तक तो दिखा नहीं। तो लोग चाहते हैं कि हमको ये चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा दिख जाए, किंतु ऐसा कभी भी संभव नहीं है। चक्षुरादि इंद्रियों का विषय ही नहीं है। अवांग मनस गोचर न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य के द्वारा ये निषेध किया गया है कि ब्रह्म से, ये चक्षुरादि इंद्रियों से ब्रह्म का दर्शन संभव नहीं है। और ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों का विषय इसलिए नहीं है कि सज्जनों, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषयों को ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। चक्षु है वो बड़ी सीमित है, वो केवल रूप का ही दर्शन कर सकती है, शब्द का प्रत्यक्ष वो नहीं कर सकती है। और कान भी सीमित है, उनकी शक्ति भी बड़ी सीमित है, वो केवल शब्द श्रवण कर सकता है कान, किंतु उनको कहो रूप का दर्शन तो कर सकेगा नहीं। पांचों ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बड़ी सीमित है, वो एक एक विषय को ही ग्रहण कर सकती है। और ब्रह्म है वो शब्द रूप भी नहीं, स्पर्श रूप रस गंध रूप नहीं है, तो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा भला उनका कैसे ज्ञान हो सकता है बताइए। और ये भी नहीं कि ब्रह्म कोई एक जगह कोई पिंडीकृत होकर के एक जगह पहाड़ में या कहीं समुद्र में या नदी सरोवर में रह जाए कि वहां पर पैदल चल करके जाया जा सके, और ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है कि जिससे उनको हाथ से ग्रहण कर सके, उनका कोई नाम रूप नहीं है कि जिससे उनको वाणी के द्वारा उनको बता सके या त्याग विसर्जन कर सके, इसलिए कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का वो विषय नहीं है। ठीक है कि नहीं? इसलिए हम लोग ये सोचे, और क्या सामान्य ये जो यहां पर उपनिषद का श्रवण करने आ रहे वो तो कहते हैं कि ठीक, लेकिन जिसने कभी ये सत्संग नहीं किया है, श्रवण नहीं किया है, वो तो कहेंगे कि परमेश्वर तो है ही नहीं, कहते आजकल लोग यही स्वीकार करने के तैयार नहीं है कि ब्रह्म है कि नहीं है। और हमारे यहां ये कहा गया कि ब्रह्म नास्ति इति यो ब्रूयात, जो ब्रह्म नहीं है ऐसा जो कहते हैं वो सबसे बड़ा संसार में पापी है। ठीक है, हमको समझ में न आए न दिखे तो ये थोड़ा है, जो चीज हमको नहीं दिखती है वो नहीं होती है, होते हुए भी न देखे हो सकता है हमारे अंदर कोई गड़बड़ी हो। देखिए, किसी की चक्षु विकृण हो गई तो उनको रूप दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि रूप समाप्त हो गया। अरे रूप समाप्त नहीं हो गया, तुम्हारी इंद्रिय विकृण हो गई इसलिए तुमको रूप नहीं दिखता है, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि रूप समाप्त हो गया। सूर्य के आड़े बादल आ जाता है तो हमको सूर्य मंडल नहीं दिखता है, तो ये थोड़ा है कि सूर्यमंडल समाप्त हो गया, तुम्हारी जो आंख है ना वो ओझल हो गई इसलिए सूर्य दर्शन नहीं हो रहा। घनच्छन्न दृष्टि, वो दृष्टि जो है वो बादल से ढक गई, लेकिन हम लोग ये स्वीकार नहीं करते, ऐसे थोड़े ना स्वीकार करेंगे। और हम लोग ये मानते हैं कि अरे सूर्यमंडल ये आच्छादित हो गया, बादल से आच्छादित हो गया, कहां शुद्र बादल और कहां महान हजारों योजन में विस्तृत सूर्यमंडल, क्या एक शुद्र बादल सूर्यमंडल को ढक सकता है क्या? नहीं। देखिए ब्रह्म, ये सारा संसार है वो ब्रह्म का पसारा है, लेकिन हमको यदि ब्रह्म न दिखे तो इसमें ब्रह्म का कोई दोष नहीं, हमारा दोष है। इसलिए हम कभी ये न कहें कि हमको परमात्मा ने नहीं दिखता है, इसलिए नहीं है। देखिए जो उलूक है, उलूक को सूर्य दर्शन नहीं होता है तो उसमें कोई सूर्य का दोष है क्या? नहीं। हमारा नीति शास्त्र में कहा, नोलू कोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। दिन में उलूक को सूर्य दर्शन न हो सके तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। उलूक तो यही कहेंगे कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है, यदि होती तो मेरे को कभी न कभी तो दिखती। धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्। देखिये जो धारा है बारिश, वो चातक के मुख में यदि न गिरे तो उसमें मेघ का दूषण है, धारा बारिश का कोई दूषण है क्या? बारिश का दोष है क्या? नहीं। वो चातक अपना मुख बंद करके बैठा। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम्। देखिए वसंत ऋतु की ये महिमा है, वसंत ऋतु में जो सभी पेड़ पौधे जो है बड़े पल्लवित हो जाते हैं, और एक करीर नाम का एक वृक्ष है, करीर जिसमें केवल कांटे ही रहते हैं, पत्ता नहीं होता। अब वसंत ऋतु चल रही है किंतु करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते हैं, तो उसमें वसंत ऋतु का दोष है क्या? नहीं, उनका अपना दोष है। तो परमात्मा हमको न दिखे तो उसमें हमारा दोष है। हम ये कभी न कहे कि परमात्मा नहीं है, ऐसा संदेह कभी न करे। ऐसा संदेह या संशय या विपर्य रहेगा तब तक परमात्मा दर्शन नहीं होगा। इसलिए यहां पर यह भावना की गई कि मा ब्रह्म निराकरो, मा ब्रह्म अहम ब्रह्म मा निराकुरिया, मैं ब्रह्म का कभी भी निराकरण न करूं। ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है या ब्रह्म नहीं है, ऐसा निराकरण ब्रह्म का मैं तिरस्कार कभी मैं न करूं। एक और पंक्ति ले लो, मां ब्रह्म निराकरो, ठीक है मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, किंतु ब्रह्म यदि हमारा निराकरण कर दे तो तब भी हम ब्रह्म दर्शन नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए फिर आगे ये भी कहा, मां ब्रह्म मां निराकरोद, मां ब्रह्म मां निराकरोद, ऐसा एक वाक्य बनाना। मां का अर्थ है माम, मेरे को, ब्रह्म मां निराकरोद, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, यानी ब्रह्म है वो मेरे को कभी न छोड़े। मां ब्रह्म मां निराकरोद, यानी ब्रह्म से हम प्रार्थना करते हैं स्वस्मान माम वियोजयतु, ये प्रार्थना करे कि हमको ब्रह्म अपने साथ जोड़ ले, ब्रह्म हमको कभी दूर न धकेल दे, यानी कि ब्रह्म के साथ हमारा अभेद हो जाए। कब अभेद होगा? उपनिषद का श्रवण होगा तभी तो, तब तो मसी महावाक्य का श्रवण, और ये कब होगा? जब ये सारी बातें होगी तब। और तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण होते ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव पर्यंत ज्ञान हमको हो, ये अभिप्राय है। संसारे मां पातयतु, ये कह रहे हैं कि भगवान हमको उठा लीजिए, आपके साथ मिला लीजिए, ये नहीं कि आप हमको धकेल दे और हम संसार में पड़े रहे, ऐसा नहीं। संसारे मां पातयतु, मेरे को संसार में मत डालिए, आपके साथ एक कर दीजिए, ऐसा उपाय करे, ऐसी अनुकूलता कर दे कि मैं आपसे एक हो जाऊं, कभी दूर ना रहूं मैं। इतनी बड़ी दिव्य भावना इस शांति मंत्र में छिपी है। और देखो आगे कहते, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा, ये जो है ना उसको वाक्य बनाए, तदात्मनि निरते धर्मा ते मयि संतु, ये अंतिम वाक्य है। तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि संतु, ये कहना। देखो कहते हैं तदात्मनि निरते, अब जो है इस प्रकार की भावना से मुमुक्षु जो है बिल्कुल ब्रह्म में क्या हो गया, निरत हो गया। किस में? तदात्मनि, आत्मा में वो निरत हो गया। ब्रह्मात्मनि निरते, ब्रह्म में रमण करने योग्य हो गया, ब्रह्म की ओर अभिमुख हो गया। इस प्रकार की भावना के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मुमुक्षु है वो ब्रह्म में निरत हो गया। तो ब्रह्म में प्रेम करने लगा वो, तो ब्रह्म में प्रेम करते हुए क्या करना है, तो मुमुक्षु जो है वो ये अभिलाषा रखते हैं कि ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु, तब अब मैं ब्रह्म की ओर अभिमुख हूं, ब्रह्म जिज्ञासु हूं मैं, तो ब्रह्म जिज्ञासु मैं पूर्ण रूप से कब हो सकूंगा, तो कहा जब मेरे अंदर ये उपनिषद के अंदर जो प्रकाशित धर्म है वो मेरे अंदर आए। उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिए जो अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं, जो अधिकार चाहिए वो मेरे अंदर आए। तो उपनिषद में अधिकार का जहां विचार किया तो वहां पर कहा गया कि जो विवेक, वैराग्य, शमदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार साधन से जो युक्त होगा वो ये ब्रह्म को जान सकेगा। ब्रह्म की जिज्ञासा ही उनको होगी जो विवेक आदि चार साधन से संपन्न है। तो ये जो है विवेक आदि चार साधन, शमदमादि शांत दांत उपरति तितिक्षु श्रद्धा समाहि तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मनम पश्येत, ये जो है वो तो धर्म मेरे अंदर आए, तो फिर मैं ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव करने में मैं समर्थ हो जाऊं, ते मयि संतु मेरे अंदर आ जाए और मैं साधन चतुष्टय संपन्न हो जाऊं और ये उपनिषद का श्रवण करने में समर्थ हो जाऊं। मनन और निधिध्यासन पूर्वक जब श्रवण होगा तो श्रवण से साक्षात्कार होगा और अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का अनुभव तक मैं हो जाऊं और मेरा संसार निवृत्त हो जाए। और अंत में तीन बार शांति शब्द का उच्चारण का अभिप्राय है, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक, ये तीनों जो है दोषों की निवृत्ति हो और मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं। तो ये जो है शांति मंत्र के प्रवचन की जो श्रृंखला है वो मैं यहीं समाप्त करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग जो है परमात्मा में निरत रहे और अपने स्वरूप का अनुभव करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब मिलकर हृदय की संपूर्ण गहराई से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे संत प्रेमपुरी में आते हैं और हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्ग दर्शन करते हैं। वैदिक शांति पाठ का कितना महत्व है और कितनी आवश्यकता है हमारे दैनिक जीवन में, इसको बड़ी गहराई के साथ और बड़ी शांति के साथ स्वामी जी ने इन दिनों में हमें समझाया। जैसे हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, हमारा कार्य सफल हो। वैसे ही जैसे हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमारे दैनिक जीवन में वैदिक शांति पाठ का महत्व है, शांति पाठ की आवश्यकता है। स्वामी जी ने बताया, वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हम श्रवण करते हैं प्रवचन के माध्यम से, उसको हम कभी भूले नहीं। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप पधारे हैं, प्रेमपुरी पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं यह कह रहा था कि वैदिक शांति पाठ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्वामी जी ने बताया कि वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम श्रवण करते हैं प्रवचन के माध्यम से, उसको कभी हम भूले नहीं। हमारी स्मरण शक्ति बढ़े, हमारी याददाश्त बढ़े और जो कुछ भी हम प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से सुनते हैं, वो हमारे जीवन में उतरे, हम हमारे आचरण में आए। स्वामी जी ने बताया कि हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां और ग्यारहवां मन, ये स्वस्थ रहे और हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हों और हम अंतर्मुखी होकर आत्मदर्शन कर सकें, आत्मतत्व का दर्शन कर सकें। स्वामी जी ने बताया वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि संसार रूपी अज्ञान का, मोह का जो वृक्ष है, स्वामी जी ने वृक्ष शब्द का उपयोग किया है कि उस वृक्ष को काटने में हम समर्थ हों। और एक बात यह कही है कि जो कुछ भी है सो वासुदेव ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम, वासुदेव के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसका आपने स्वर्ण आभूषण, मृतिका और घटक, सूत और कपड़ा, इसके माध्यम से बहुत गहराई में जाकर हमें समझाया है कि जो कुछ भी है सो वासुदेवी है। मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के सचों में वंदना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अगले वर्ष भी आप पधारकर हमें धन्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। जय श्री कृष्ण।